हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 5। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं, त एकदा तु मुनयः प्रातः हुता हुतात्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् त एकदा तु मुनयः प्रातः हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् त एकदा तु मुनयः प्रातः हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् त एकदा तु मुनयः प्रातः हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् त एकदा तु मुनयः प्रातः हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् त एकदा तु मुनयः प्रातः हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् 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 शब्दों का अर्थ देखिए। त मन वे, वे कौन? जो मुनिगण यज्ञ कर रहे थे ना, कल हमने पढ़ा था कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मिलकर यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कितने टाइम के लिए? 1000 वर्षों के लिए यज्ञ स्टार्ट किया था। तो वो मुनिगण एकदा एक दिन तू, लेकिन लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रोजाना तो वो यज्ञ कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने 1000 साल के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो रोजाना वो यज्ञ करते थे। सुबह को भी यज्ञ करते थे और शाम को भी यज्ञ करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ? मुनयः, मुनिगण प्रातः, प्रातः का मतलब होता है प्रातः काल, यानी कि सुबह सवेरे का समय। जो ब्रह्म मुहूर्त में मुनिगण जो साधना करते ना जीव, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय जो होता है वो प्रातः काल होता है। क्योंकि वो समय जो है वो भगवान ने बनाया ही भक्ति के लिए, सत्वगुणी समय। जैसे हर टाइम में भी हर चीज में गुण होते हैं, तो समय भी गुण। जैसे सुबह का समय होता है ना, सूर्योदय का, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो सत्वगुणी होता है, शुद्ध सत्व होता है। और वो बना ही इसलिए होता है कि कांटेक्ट जो है ना हमारा भगवान के साथ, कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से तीव्रता से जुड़ जाए। इसीलिए जो मुनिगण होते, यहाँ पर मुनिगण लिखा मुनयः, जो वाक्य में संत हैं, जो साधु लोग हैं, जो अपनी भक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो अपनी साधना प्रातः काल में स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे मुनिगण भी सुबह सवेरे उठे और अपना जो नियत कर्म है वो सब करके उसके बाद क्या किया, हुत हुताग्नया, हुत मना जलाकर, हुताग्नया यज्ञ की अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि जिसमें यज्ञ करते थे ना वो जलाई, और सत्कृतम। अब यज्ञ की अग्नि जलाने के बाद अचानक उन्होंने किसको देखा, सत्कृतम सूतम आसीन, अचानक उन्होंने देखा कि उनके बीच में सूत गोस्वामी विराजमान, मतलब आ गए थे सूत गोस्वामी। जैसे बहुत सारे ऋषि आ रहे थे ना अलग अलग जगहों से, जब यज्ञों का सबको निमंत्रण मिला, सबको पता चलता गया तो अलग अलग आ रहे थे, तो एक दिन वहां पर सूत गोस्वामी आ गए। अब ये सूत गोस्वामी कौन थे, सूत गोस्वामी रोम हर्षण जी के पुत्र थे। अब रोम हर्षण कौन थे, ये जो थे वो समस्त जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना उनको प्रचार करते थे। रोम हर्षण यानी कि वो क्या थे, प्रचारिक थे, तो बहुत सारे ऋषियों को पढ़ के ना शास्त्र अध्ययन करके वो बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे और सबको भगवान के संदेश पढ़ के सुनाते थे, शास्त्र अध्ययन करके उनको शिक्षा देते थे। तो एक बार क्या हुआ, अब वो बहुत शायद शास्त्र पढ़ने में बिजी थे, तो वहां पर एक बार बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो वो शास्त्र पढ़ रहे थे और उनका पूरा ध्यान शास्त्र के अंदर था। अचानक भगवान बलदेव जी वहां पर आ गए। अब बलदेव जी को कौन नहीं जानता, आप सब जानते ना, वो कौन है, वो शेषनाग के अवतार है ना, शेषनाग। अब उनका स्वभाव है क्रोधित होना, तो वो जब आए और सब जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने बलदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन रोम हर्षण जी ने किसी कारण से, वो शास्त्र पढ़ रहे थे या कोई और कारण, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, माना बलदेव जी को प्रणाम नहीं किया, तो बलदेव जी जो साक्षात अनंत शेष, उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने मार डाला उसको, माना अपने हाल से या किसी तरह से उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई जो रोम हर्षण जी थे, तो फिर जो जितने दूसरे ऋषि मुनि थे उन्होंने, अब ये जो है ना, ये सब हमारे मन में इस तरह की फिर दुविधा होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं कि उनकी मृत्यु इस तरह से लिखी हुई होती है, या तो ये तो भगवान के हाथ हो उनकी मृत्यु हुई, वरना तो डायरेक्ट से ये तो भगवान के परम धाम में जाएंगे अंत समय, और भी बहुत सारे पीछे कारण होते हैं जो हमको नहीं समझ में आते, मगर हमें तो ये जो आचार्यों से सुना है वो एज इट इज बताना है। अब इसके पीछे कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई कारण होता है, उसके भी वो तो जो जैसे हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे ना आगे के जाते जाएंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, सारे जितने ऋषि थे ना उन्होंने बलराम जी से प्रार्थना की कि क्योंकि हमें ये शास्त्र पढ़ के सुनाते थे, शिक्षा देते थे, हमारे शिक्षा गुरु थे, अब इनकी मृत्यु हो गई तो हमको बहुत मुश्किल लगेगा, हमको कौन पढ़ के सुनाएगा, शास्त्र पढ़ के कौन सुनाएगा, और पुराणों के अधिकारी हम में से इतना सारा ज्ञान नहीं है, किसी के पास इतनी सारी बुद्धि नहीं है जो इस तरह ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, आपने अभी आप कुछ ऐसा करो कि कोई और को नियुक्त करो, किसी और को आप आशीर्वाद दो कि वो ऐसा करे, मना अब क्योंकि आपने किया है तो वो रोंग नहीं है, जाहिर सी बात है उनको भी उनका अधिकार था, ये उन्होंने इतने टाइम तक जो इतनी बड़ी इतनी सारी भक्ति की है, इतना सबको शिक्षा दी है, उसी का ये रिजल्ट था कि उनकी मृत्यु आपके द्वारा हुई और भगवान के परम धाम में वो गए हैं, लेकिन अब हमारा भी कुछ कीजिए। तो फिर बलदेव जी की कृपा, बलदेव जी ने अपनी कृपा का प्रदर्शन जो है वो इस तरह किया कि उनके रोम हर्षण के एक पुत्र थे जिनका नाम था उग्रश्रवा, वास्तव में उनका नाम उग्रश्रवा है, सूत गोस्वामी, यहाँ पर सूत गोस्वामी है ना, सत्कृतम सूतम आसीनम, तो सूत गोस्वामी उनका नाम नहीं था, जैसे किसी का नाम नहीं होता ना शर्मा या फिर इस तरह सरनेम होता है, तो सूत उनका सरनेम ही होगा, लेकिन उनका वास्तव में नाम था उग्रश्रवा, तो वो अभी छोटे थे लेकिन बलराम जी ने उन्हें पुराणों का अधिकारी बनाया। वास्तव में ये जो सूत गोस्वामी जिनको कहा जा रहा है, जिनका रियल नाम उग्रश्रवा है, वो बलराम जी की कृपा का प्रसाद है हमारे लिए, क्योंकि बलराम जी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया था कि अब से शास्त्रों का अधिकारी मैं उग्रश्रवा को यानी सूत गोस्वामी को बनाता हूँ। वही शास्त्र जो अध्ययन करेंगे वो कंठस्थ हो जाएगा, मतलब जो पढ़ेंगे जो भी शास्त्र होगा वो उनको कंठस्थ हो जाएगा, वो स्वयं आचरण करेंगे शास्त्र, मतलब वो एक प्रैक्टिकल आचरण वाला आचार्य बनेंगे और सबको पढ़ के सुनाएंगे, सबको शास्त्र समझाएंगे और शिक्षा देंगे। ये पूरा आशीर्वाद उन्होंने किसको दिया? सूत गोस्वामी को, जो कि किसके पुत्र थे? रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जिनको सूत गोस्वामी यहाँ पर कहा जाएगा, और हम भी उनको सूत गोस्वामी कहकर ही पुकारेंगे, लेकिन वास्तव में उनका नाम उग्रश्रवा है। तो यहाँ कभी भी आपको शास्त्र में आए उग्रश्रवा के नाम से, तो आप यही समझना कि किनका नाम हो रहा है, सूत गोस्वामी, जिन्होंने भागवत कथा हमको पढ़ के सुनाई है। ठीक है, तो समस्त ऋषियों को पता था कि अब पुराणों के अधिकारी यानी शास्त्र अध्ययन करके सुनाने के अधिकार जो प्रथम है वो किनको है? सूत गोस्वामी को है। तो अचानक से जब उन्होंने देखा कि वो यज्ञ कर रहे थे, सुबह सवेरे उन्होंने यज्ञ की अग्नि जलाई और देखा सूत गोस्वामी आ गए हैं, तो उन्होंने सत्सत कृतम, देखो यहाँ पर क्या लिखा, हुत हुतार नया अग्नि जलाई और सत्कृतम, फौरन से आदर, जब उनको देखा तो यज्ञ छोड़ दिया और सूत गोस्वामी का आदर सत्कार करने लगे। वरना वास्तव में क्या होता है, यज्ञ चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, उनको अटेंशन नहीं देनी होती है, यज्ञ में ही अपना पूरा ध्यान लगाना होता है, लेकिन सारे मुनियों की अटेंशन उनके पास चली गई और उन्होंने क्या किया, सत्कृतम, बहुत आदर किया। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम चाहे कितने ही बड़े भक्त क्यों न बन जाए, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए सदैव, जब भी वो आए तो उन्हें सम्मान देना चाहिए। आजकल चार किताबें पढ़ने के बाद हम सीनियर डिवोटीज का आदर नहीं करते हैं और अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं कि भाई हाँ हमें भी तो आता है, इसको ये क्या कर रहा है, हमें भी, लेकिन वास्तव में नम्रता जो है उसी से हमारी भक्ति में उन्नति होती है। हम चाहे किसी भी स्टेज पर चल जाए, हमें कितना ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें विनम्र रहना और दूसरों को आमानी, अपने लिए मान की इच्छा न करना, मान देना और दूसरों को मान देना, कि सबको मान देने का हमारे हृदय में होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर मान की इच्छा नहीं कि मुझे भी मान मिलना चाहिए, तो भक्तों का स्वभाव है। तो इसीलिए मुनियों ने सत्कृतम, उनको बहुत ज्यादा आदर दिया, और किसको? सूतम, सूतम माना सूत गोस्वामी, कौन? जो रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जो वहां पर आए थे। तो सारे मुनि पहले तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से अपना ध्यान हटाकर सूत गोस्वामी को आदर देने गए, और आदर देने के बाद उन्होंने क्या किया, आसीनम, आसीन माना उनको एक बहुत ही सुंदर आसन बना के उस पर बिठाया। बाकी सारे ऋषियों के लिए कोई आसन की पहले बात नहीं होती, सब ऐसे ही यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सूत गोस्वामी जैसे पधारे तो उनके लिए व्यास आसन बनाया गया। वास्तव में भक्तों, जो व्यास आसन होता है ना, इसके प्रथम अधिकारी वेद व्यास जी हैं, क्योंकि हम तक जो भी शास्त्र का ज्ञान अब तक आया है वो सारा का सारा वेद व्यास जी के माध्यम से आया है। तो जो भी आज प्रचार कर रहा है, कोई भी यदि कुछ पढ़ के सुना रहा है, कुछ प्रचार कर रहा है शास्त्रों का, तो सब कृपा जो है वेद व्यास जी की है। तो हम वेद व्यास जी के आदर में व्यास आसन बनाते हैं, और जो भी उस आसन पर बैठकर जो भी बोल रहा है वो एज इट इज बोलना है, जो सब वेद व्यास जी ने कहा, यानी हम वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं कि जो जिसकी जो मर्जी आए वैसे नहीं बोलना चाहिए, हमें एज इट इज बोलना चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या है कि एक वक्ता की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो वेद व्यास जी को एज इट इज बताए, उसके अंदर एक ही क्वालिटी होनी चाहिए वक्ता के अंदर, एक जो प्रचार कर रहा है या शास्त्र अध्ययन कर रहा है कि वो उसके अंदर से ना कुछ निकाले और ना ही कुछ अपनी तरफ से एड करे। जो कुछ वेदव्यास जी ने कहा है उसको सरल करके बता दे। जैसे बहुत सारे लोग को संस्कृत समझ में नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, संस्कृत के जितने शब्द हैं उसी को हम लोग समझ रहे हैं ना। जैसे सकृतम उसका आदर किया, सूतम सूचिका, आसीनम उसको बिठा, एक एक चीज को समझ रहे हैं ना। जो वेद व्यास जी ने कहा है वो शब्द को समझना ही सार है। ये तो हमारा हमारे ऊपर श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही, जो कुछ लिखा हुआ है उसको ही समझा देना है और सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना सरल करके बता दिया है। असीम कृपा हमारे ऊपर। जब कोई भागवत श्रवण कर रहा है ना, एक एक शब्द को सुन रहा है, भागवत के श्लोक को सुनना, उनको समझने का प्रयास करना, ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। वेद व्यास जी की, इवन सब भगवान श्री कृष्ण गौर गुरु और गौरंग की महान कृपा, उसके बाद ब्रह्मा जी की कृपा, नारद जी की कृपा, वेद व्यास जी की कृपा, सुखदेव गोस्वामी की कृपा, सूत गोस्वामी की और श्री प्रभुपाद जी की, सब की कृपा जब एकत्रित हो जाती है ना, सब हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि हम भागवत महापुराण को श्रवण करने के योग्य बनते हैं। तो उन्होंने, जो भी ऋषि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी के लिए एक सुंदर आसन बनाया, उस पे बिठाया और फिर क्या करने लगे, पप्रच्छुर। पप्रच्छुर का मतलब होता है उनसे पूछने लगे। क्या पूछने लगे? इदम। इदम का क्या मतलब होता है? ये पूछने लगे। ये माना, अब यहाँ पर इदम यानी निम्नलिखित। अब जो जो क्वेश्चन वो करते जाएंगे ना, वास्तव में इस चैप्टर का, इस पहला वाला जो अध्याय है उसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। यानी इस अध्याय में मुनि, जितने भी 88,000 ऋषि मुनि जो बैठे हुए ना, वो सब सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछेंगे। टोटल 6 प्रश्न पूछेंगे और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। तो अब ये पप्रच्छुर यानी इदम का मतलब होता है ये पूछा। ये पूछा तो क्या पूछा? जो अभी आएंगे ना क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे और किस प्रकार पूछे। अब देखो, उन्होंने पहले ही सत्कृतम कर दिया था, यानी उनका आदर पहले ही कर दिया था, बिठाया था आसन पर। लेकिन जब प्रश्न पूछा, फिर से एक दूसरा भी लिखा हुआ है, आदरात, है ना, पप्रच्छुरिदम आदरात, आदर से पूछा। तो यहाँ पर विधि बताई गई। भागवत हमें सिखाता है कि किसी से जब कोई सीनियर डिवोटी आते हैं या कोई भक्त होते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछने का क्या तरीका है। आजकल लोग इस तरीके को भी फॉलो नहीं करते, बस जो भी पूछते हैं तो चैलेंजिंग मूड में, ये सोचकर देखें इसको आता है, देखेंगे किसको उल्टे सीधे सवाल भी पूछेंगे, और जिसका मतलब सवाल भी ऐसा पूछना चाहिए। देखेंगे हम कि ये सूत गोस्वामी से जो ऋषि मुनि क्वेश्चन पूछते हैं, वो ना केवल उनके परंतु समस्त जितने भी प्राणी हैं उनके कल्याण के लिए। तो प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए जो कल्याण करे, चैलेंजिंग मूड में प्रश्न। और भगवान भी बताते हैं 4.34 में, तद्विधि प्रणिपाते न, सबसे पहले तो प्रणिपात करो, सबसे पहले तो उसका आदर करो, क्योंकि वो तुम्हें जो बताने वाला है उससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वो तुम्हें जो बता रहा है उसको यदि आप फॉलो करोगे तो आपके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है। तो आज तक तुमने जिस जिसका आदर किया, उसने तुम्हें भौतिक ज्ञान दिया, लेकिन ये तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, तो इसको आपको कितना आदर करना चाहिए। क्योंकि वो भौतिक ज्ञान क्या आपको इसी जीवन तक काम आएगा, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए तो भगवान 2.40 में कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति स्वल्प वायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी यदि इस आध्यात्मिक रास्ते पे आपने थोड़ी सी भी प्रगति कर ली, तो फिर उसका कभी भी नाश नहीं होगा, उसका कभी भी हानि नहीं होगी। चाहे आपको कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, वो सदैव आपकी सहायता करेगा। वो समय जो आपने भक्ति में लगाया, वो समय जो आपने भगवान के कथा के श्रवण में लगाया है, वो समय आपके जीवन का सबसे ज्यादा उत्तम समय है। तो जिसकी वजह से वो समय आपको प्राप्त हुआ, तो हमें कितना उसका आदर करना चाहिए। तो हमें सदैव श्री प्रभुपाद जी का और इन समस्त आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। और जिस तरह यहाँ पर भी देखो हम देखते हैं कि सारे ऋषि मुनियों ने पहले ही आदर सत्कार करके उनको बिठाया और फिर जब प्रश्न पूछा तो उनका वापस से आदर किया, आदर आदर पूर्वक। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उग्र शर्मा जी के अंदर यानी सूत गोस्वामी जी के अंदर उन समस्त ऋषियों की बहुत श्रद्धा थी, बहुत उनके अंदर प्रेम था और शास्त्र कहता है दृढ़ श्रद्धा जो है, दृढ़ श्रद्धा रखने वाला मनुष्य किस चीज में श्रद्धा होनी चाहिए? एक तो शास्त्र में, शास्त्र यानी जो हम पढ़ रहे हैं जैसे अभी श्रीमद् भागवतम हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा माना ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो ये शास्त्र पढ़ रहे हैं उसी से हमारा कल्याण होने वाला है, बस यही हमारे एकदम पक्का निश्चय कि यही शास्त्र हमारे अंतिम लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा, यही शास्त्र कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, तो शास्त्र के अंदर श्रद्धा होगी। कुछ लोग शास्त्र के अंदर श्रद्धा नहीं रखते हैं, उसके अंदर विश्वास नहीं रखते, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूरा करते हैं। भगवद गीता भी पढ़ते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं स्टार्ट, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, शब्दों के अंदर कोई इंटेंशन नहीं, बस रीड कर लिया, पढ़ लिया, रीड कर, ऐसे नहीं। शास्त्र के अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्र के अंदर जो लिखा हुआ है उसी से मेरा कल्याण होने वाला है। और दूसरी श्रद्धा किसके अंदर होनी चाहिए? वक्ता के अंदर, जिसने यह शास्त्र बोला है। जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो किसने बोली है? वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के शब्द बोले हैं। और बताई किसने हमें इतना, मतलब डिटेल से? शिला प्रभुपाद जी ने। तो भगवान श्री कृष्ण और गुरु, गुरु और गौरंग पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वही हम, वहीं से हमारा कल्याण होगा। श्री प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो उन्होंने हमें बताया वो एज इट इज बताया है, हमारे कल्याण के लिए बताया। तो और ये जो भागवतम महापुराण हम पढ़ रहे हैं वो अभी सूत गोस्वामी के मुखारविंद से हम पढ़ेंगे, अभी तो वेदव्यास जी के वचन हम पढ़ रहे हैं स्टार्ट में अभी, क्योंकि ऋषि मुनि पूछ रहे हैं ना, उसके बाद जब ऋषि पूछ लेंगे फिर सूत गोस्वामी बोलना आरंभ करें। तो इन सब में हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए और जो शास्त्र के वक्ता है उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जो है उससे हमारी प्रगति होती है। श्रवण में हमारी पूरी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है मुझे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, हम अपने हिसाब से प्रयास कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि इस भागवतम महापुराण, ये तो समुद्र है, गीता और भागवतम, हमारी इतनी सीमित बुद्धि है कि उसको हम अच्छे तरीके से, जितना इसके अंदर ज्ञान है वो सारा का सारा नहीं समझ सकते, लेकिन जो भी समझ में आ रहा है, जो भी सुन रहे हैं, उसके अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये ही मेरा कल्याण करेगा। अगर हम भागवतम सुन रहे हैं तो बस ये सुनना ही मेरे लिए सबसे महान कार्य है, ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ इससे ज्यादा उत्तम कार्य मेरे जीवन का और कोई हो ही नहीं सकता, इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण में। और बिठाया, उनको आदर से पूछना शुरू किया। अनुवाद देखिए, एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातः कालीन कृत्य से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो आइए इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करें कि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माभ्यस्ययतो वयादितरतश चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्मरिदाय आदि कवये मुहुयन्तिया सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकै तवोत्र परमो निर्मात्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो वेदव्यास जी ने इतना मंगलाचरण करने के बाद हमें फोर्थ श्लोक में कल बताया, निमिष निमिष क्षेत्री विषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत के निमिषारण्य वन में समस्त ऋषि जो सोने का आदि जो जितने ऋषि थे वो सब एकत्रित हुए किस लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से ताकि भगवान को और भक्तों को प्रसन्न कर सके। तो वो यज्ञ कर रहे थे और फिर एक बार क्या हुआ था एकदातु मुनयः प्रातर्हुत होताग्नय एक बार क्या हुआ सारे मुनि उन्होंने सुबह सवेरे अपने यहाँ पर पता है ना देखो कि उन्होंने क्या किया प्रातः कालीन कृत्यों से निवृत्त होकर यानी कि प्रातः काल में तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि जलाई वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे और उससे पहले अपनी पूरी साधना कंप्लीट की थी। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि है ना भक्त को क्या करना चाहिए अपनी साधना के लिए। तो उन्होंने क्या किया जब अपनी यज्ञ की अग्नि जलाई तो सूत गोस्वामी पधारे तो सबसे पहले उनका आदर सत्कार किया उनको आसन पे बिठाया और उसके बाद फिर से उनका आदर सत्कार किया कुछ प्रश्न पूछने के लिए। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी प्रथम लाइन में कहते हैं कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। ये हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो उसके लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा और वह सर्वश्रेष्ठ समय क्या है प्रातः काल यानी जो हमारी नियमित संख्या है जप जप की और अध्ययन जो हम करते हैं वो उसका अगर पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं ना तो उसके लिए हमें प्रातः काल का समय चुनना चाहिए क्योंकि उस समय में क्या होगा असल में जप करने का क्या उद्देश्य है जप क्यों करते हम ताकि हमारा जो ये दुष्ट मन है जो सदैव भौतिक विचारों से ग्रस्त रहता है जो भक्ति के अंदर भी हमें भौतिक विचारों से ही हमें डिस्टर्ब करता रहता है वो मन भगवान के श्री चरणों में लगे हमारा ये अपवित्र और अशांत मन जो सदैव अपवित्र भावनाओं और अपवित्र सोचों से भरा हुआ है वो भगवान की पवित्र सोचों में परिवर्तित हो जाए भगवान के श्री चरणों में उसका आकर्षण निर्माण हो जाए। तो ये केवल तभी हो सकता है जब हम अपनी साधना को सही समय पर करें। हम देख रहे हैं कि हम कितने सालों से, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगा भगवान में, तो फिर उसका, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साधना का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि अभी तक भौतिक विचार ही जब हृदय से नहीं निकले, भौतिक मलिनता, भौतिक गंदगी हमारे हृदय से यदि नहीं निकल रही है, चेतो दर्पण यदि हो नहीं रहा है, तो हरिनाम संकीर्तन का सही लाभ तो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि हम जप जो है वो सही समय पर नहीं, वास्तव में जप करने के लिए 2 घंटे ही काफी है। अगर वो सुबह सवेरे कर लिया जाए तो पूरा दिन हम दूसरी क्रियाएं कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध के लिए उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या हाल होता है, सुबह सुबह को माला करते रहते हैं, 2 माला सुबह को की, फिर वापस 2, फिर वो जब पूरा सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक माला ही घसीटते रहते हैं, जैसे बड़े हरिदास ठाकुर बन गए। लेकिन ऐसा ये चीटिंग है एक तरह से, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। इस तरह से मन नहीं लग रहा हमारा, बस मुख से शब्द निकल रहे हैं। तो आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं है ना अच्छा सुबह सवेरे जप नहीं कर पाती हूँ बस, लेकिन है ना आपसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है जो बोलता है ना वो यदि नहीं करता है तो दूसरों के ऊपर असर नहीं होता है। तो यदि या तो फिर किसी और को नियुक्त कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है अपने आप पर कि मेरी भी माला रात तक खत्म होती है। मेरी हृदय से इच्छा है कि सुबह प्रातः काल में 3 से 5 बजे तक मेरी जपा कंप्लीट हो जाए, या 4 से 6 बजे तक मेरा जप कंप्लीट हो, लेकिन होता नहीं है इस तरह। मैं हृदय से गुरु महाराज से और गौरंग महाप्रभु से लज्जित हूँ इस बारे में कि मेरा जप इतना सही समय में नहीं हो रहा है, इसलिए उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं इतनी शुद्ध नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, इतनी योग्यता भी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन आप सब प्रार्थना कीजिए, हम सब मिलकर हमें आगे, हम में से हम सब एक ही लेवल पर हैं, ऐसा नहीं है गुरु शिष्य की तो बात ही नहीं है, बस मैं रीड कर रही हूँ एज इट इज। आप लोगों के लेवल से भी मेरा लेवल गिरा हुआ है, मैं इतनी अच्छी सेवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति है यदि वो हृदय से किसी के लिए की जाए। और मैं दिल से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका जप जो है वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में होने लगे, और भगवान के साथ आपके हृदय की हृदय मन जो है वो भगवान के श्री चरणों में लगे, ताकि हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा लाभ यही तो है कि कृष्ण प्रेम में, कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति उत्पन्न हो। यदि वो हो ही नहीं रही है तो फिर हम सही लाभ तो नहीं मिल रहा है ना। मुझे आप सबकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है ताकि मैं अपनी साधना अच्छे से कर सकूं। तो फिर इसके बाद यदि मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊंगी ना, तो वो आप सब पे ज्यादा असर करेगा, वरना मैं अपने आप को बिल्कुल योग्य नहीं समझती हूँ कि मैं आप सबको भागवतम पढ़ के सुनाऊं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ अवसर है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान सम्मान एक ऊंचा आसन प्रदान किया, ऐसे लिखा है ना, सत्कृतम सूतम आसीनम, के उनको बहुत ही अच्छा आसन दिया। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिसे व्यास आसन कहते हैं, श्री व्यास देव समस्त मुनियों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं, अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यास देव के दृष्टिकोण को सही तौर से प्रस्तुत करें। अब जितने भी वक्ता है ना, बाकी जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो श्री व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं, यानी कि उनको क्या करना है, श्री व्यास देव जी का दृष्टिकोण, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही तरह से प्रस्तुत करना है। श्री व्यास देव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और उनसे उसे सूत गोस्वामी ने सुना। सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो उस समय वहां पर सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। बहुत सारे ऋषि थे, क्योंकि राजा जब राजा को श्राप मिला था तो बहुत सारे ऋषि आए थे वहां पर उनकी रक्षा के लिए, या उनको देखने के लिए, या उनसे मिलने के लिए। तो सब ऋषियों से राजा पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है मुझे, अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। तो फिर सब अपना अपना मत बता रहे थे, कोई बोल रहे थे आप दान करो, कोई बोल रहे थे यज्ञ करो, कोई बोल रहे थे तपस्या करो, कोई क्या करो क्या करो, इस तरह बता रहे थे। तो अचानक से वहां पर शुकदेव गोस्वामी आ गए और फिर उनसे पूछा गया। अब वो बाद में कथा आएगी, लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी बताना शुरू किए, भागवतम पढ़ना शुरू किए, तो वहां पर और भी बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। कहा जाता है कि जब शुकदेव गोस्वामी माता के गर्भ में आए थे ना, तभी से जितने भी ऋषि मुनि, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको पता होता है कि अब क्या होने वाला है, तो उनको पता था कि सूत अभी शुकदेव गोस्वामी जन्म लेने वाले हैं, और वो जब राजा परीक्षक को श्राप मिलेगा तो वो भागवत कथा सुनाएंगे। धरती पर प्रथम कथा हुई थी शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। तो फिर उन्होंने जब से वो गर्भ में आए थे ना, तभी से वहां पर आके अपनी सीट बुक कर दी थी, यानी आके गंगा के तट पर बैठना शुरू कर दिया था कि एक दिन अभी ऐसा आएगा कि वो अभी गर्भ में है, लेकिन जब वो जन्म लेंगे फिर वो भागवत, इतनी उत्सुकता होनी चाहिए भागवतम कथा सुनने के लिए। हमें क्या होता है, हम फॉरवर्ड करते हैं, स्किप करते हैं कि यहाँ ये तो पता चल रहा है, ये तो पता चल रहा है। उसको जितनी दफा पिबत भागवतम रसमान है, उसको कंटिन्यू सुनो, बार बार सुनने के लिए है ये भागवत कथा। अब यहाँ पर कहीं कथा होती है, हम सोचते हैं कि कथा का टाइम क्या दिया है, 3 से 5 बजे तक कथा है, तो हम लोग 5 बजे तक चलेंगे ना, 4 बजे जाएंगे, 1 घंटा सुनेंगे, 2 घंटा कौन बैठता। लेकिन ये ऋषि मुनि इतने सालों से आकर बैठ गए थे कथा सुनने के लिए, वो अभी तक पैदा भी नहीं हुए, और आप लोग को ये सोचकर या सुनकर कितनी हैरत होगी कि वैसे तो साधारण बालक जो है वो अपनी माँ के घर में 9 से 10 महीने तक रहता, लेकिन शुकदेव गोस्वामी अपनी माता के घर में 12 साल तक रहे थे। 12 साल वो माता के गर्भ में थे, और वो ऋषि मुनि 12 सालों से, पहले तो वो 12 साल जो माता के गर्भ में थे, उसके बाद भी बहुत टाइम के बाद ये सीन हुआ था जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने फिर जाकर अपने पिता श्री वेद व्यास जी से भागवतम सीखा, फिर जाके वहां पर फिर कभी जाके कथा की। तो इतना टाइम उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे, उन्हें श्रद्धा थी श्रीमद् भागवतम पे कि हम और कोई साधना करेंगे उससे हमारे प्रेम का निर्माण नहीं होगा भगवान के साथ, ये श्रीमद् भागवतम जब हम सुनेंगे तभी हमारे भगवान, हमारे जीवन का लक्ष्य परम सिद्धि हमें प्राप्त होगी। तो उसके लिए ऋषियों का काम क्या है, मुनि का क्या काम क्या है, कि वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो बोला यही सबसे बड़ी साधना है कि हम भागवतम श्रवण करेंगे, तो वहीं पर जाके पहले सीट बुक कर दी जहाँ पर आगे जाके इतने सालों के बाद कथा होने वाली थी। तो वहां पर सूत गोस्वामी भी थे उनमें, और सूत गोस्वामी को क्योंकि बलदेव जी ने आशीर्वाद दिया था कि आप आगे प्रचार करोगे, तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को आगे बिठाया था कि आप आ जाइए, आप इधर आइए, अब मैं कथा कर रहा हूँ, उसके बाद ये कथा को आप पूरा गौर से सुनो, इसके बाद आपकी टर्न है, फिर आप ये कथा करोगे। तो यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री वेद व्यास ने भागवत का कथा का संदेश शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और उसे सूत गोस्वामी ने सुना, उस टाइम पर सुना। श्री वेद व्यास के सारे प्रमाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पे दृढ़ रहते हैं। अब गोस्वामी और गोदास, हम सब गोदास हैं, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सोना नहीं चाहिए रात को सुबह को, लेकिन फिर भी इंद्रियां, हमारे शरीर को अच्छा लगता है इसलिए हम सो जाते हैं, लेकिन गोस्वामी है वो जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर लिखा है ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हैं, और जैसा पूर्ववर्ती आचार्य करते थे उनके पथ में दृढ़, जैसा उन्होंने भक्ति करने के वेदी विधान बताए हैं उन्हीं के अनुसार जो है ना वो कार्य करते थे। हमारी तो अक्सर मंगल आरती छूट जाती है जब भी हमारा सही नहीं होता है, और दूसरी भी साधना जो है वो हम पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पता नहीं भगवान गुरु महाराज हम पर कब प्रसन्न होंगे। आप सब शुद्ध भक्त हो, इतनी श्रवण में निष्ठा है आप सबकी, मैं तो फेस नहीं कर पाती हूँ अपने गुरु महाराज को। ऐसा लगता है कि मैं कोई भी आदेश को सही ढंग से पालन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गोस्वामी वो होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने आचार्यों के निर्देश अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। ये भागवत पर मन माने व्याख्या नहीं करते, यानी कि वो आचार्य जब भागवत बताते तो अपनी मन मानी व्याख्या नहीं करते, जैसा शरसूत गोस्वामी ने बताया, जैसा वेद व्यास जी ने लिखा उसको एज इट इज बताते हैं, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत ही सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन्हें पहले कभी ना सुना हुआ दिव्य संदेश दिया। अब ये जो दिव्य संदेश है वो पहले के किसी के द्वारा नहीं, लेकिन जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो परंपरा से आए उनके जरिए हमने सुना है, तो सावधानी के साथ एज इट इज देना है। उसमें कुछ अपनी मनमानी व्याख्याएं नहीं करनी है। ऐसा क्यों पता है? बार बार श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये दिव्य रहस्य है, उसके अंदर दिव्य टेस्ट है, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी से मुख से निकला हुआ अमृत है ये। पहले इसको फल कहा गया, फिर जूस कहा गया, ऐसा फल जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, एकदम अमृत के समान ये जूस है। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आपके पास एक ग्लास जूस हो या फिर आधा ग्लास जूस हो, समझो, ठीक है, और उसमें आप अपनी तरफ से पानी ऐड कर दो, यानी कि अब ये तो डायरेक्ट से जूस है और उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो, वो तो जूस नहीं है, वो तो प्योरिटी हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम किसी के अंदर कैसे डाल सकते हैं? प्योर शब्द आपके आपको है ना परिवर्तित करते हैं, प्योर शब्द इज इट इज जो शास्त्र है ना, वो जब आपको बताया जाता है तो उसमें परिवर्तन आता है। अब उस जूस के अंदर आप जितना पानी डाल दोगे तो उसकी जो रियलिटी है, उसका रियल टेस्ट और रियल जो असर है वो कम होता जाएगा, ऐसा होगा ना। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि जो एक बार आपने रियल टेस्ट असली जिसने स्वाद चख लिया हो, देसी घी, वैसे देसी घी तो जरा अभी किसी को लाइक होता है, असली हनी बोलते थे, हाँ असली मधु जिसने चख लिया हो, तो फिर मार्केट के जो नकली हनी होते हैं ना, जैसे शहद, वो उसको इतना आकर्षित उसमें टेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अब उसको अगर कोई मिलाकर दे रहा है, जैसे अभी नया बंदा है उसको पता ही नहीं है कि रियल टेस्ट क्या है, उसको मिलावट वाला दे रहे हैं, लेकिन उससे वो उसको फायदा नहीं होगा, वो लाभ नहीं होगा जो रियल टेस्ट में या रियल जूस में, रियल नेक्टर में जितना फायदा होता है वो नहीं होगा। तो फिर ऐसा कहा है कि सावधानी के साथ सेवा करनी है, एज इट इज बताना है, जैसा संदेश पूर्ववर्ती आचार्यों से आया है वैसा ही वैसा। आगे है, भागवत के श्रोता गण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा ना प्रपच रिदमादरात, तो आदर से पूछना चाहिए प्रश्न, लेकिन चुनौती नहीं होनी चाहिए, चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि सम्मान पूर्वक वक्ता से प्रश्न करें। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रोता को चाहिए कि वो सम्मान पूर्वक वक्ता से प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देशन हुआ है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए उन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत ही सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आचार्यगण बताते हैं कि जब वो उनसे प्रश्न पूछना शुरू हुए, उनका सम्मान करना शुरू हुए, तो सूत गोस्वामी ने किया, बोला कि अभी तो यज्ञ करने के लिए जमा हुए ना, यहाँ पर सब लोग यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, 1000 साल के उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो बोला आप यज्ञ करो ना, आप यज्ञ करो, ये बहुत अच्छा काम है, आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? ये जो प्रश्न अभी पूछना शुरू किए थे, तो बोला ये यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ करो, प्रश्न पूछने की क्या बात है। वास्तव में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जहाँ पर गीता समाप्त होती है, गीता जहाँ गीता का पर्यवसन होता है यानी 18.66 में क्या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम श्रमजा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। वास्तव में इस कलयुग में एक ही यज्ञ है ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सागोपांगास्तपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस, कि जो बहुत ज्यादा मेधस यानी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे कलयुग में वो एक ही यज्ञ करेंगे। कौन सा? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करेंगे यानी भगवान की कथाओं का भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये चीज करके दिखाई, मुनियों ने कहा नहीं ये यज्ञ तो केवल एक बहाना था, हम लोग तो सिर्फ इसलिए चाहते थे कि कोई वक्ता आए हमें बताए और अभी हम लोगों को ये यज्ञ नहीं करना। फौरन से उन्होंने क्या किया, पहले जो यज्ञ किया था उसकी अग्नि को जलाया और फिर अंतिम यज्ञ में आहुति डाल दी। फिर भी सूत गोस्वामी उनको परीक्षा के लिए उनसे पूछ रहे थे कि नहीं अब यज्ञ करो सब लोग सब, अब इतने 88,000 ऋषि मुनि जब इकट्ठे हुए हैं तो सूत गोस्वामी देखना चाहते थे कि कहीं इनमें कुछ ऐसे ऋषि तो नहीं है जो ये सोचते हों कि नहीं यज्ञ करने के लिए आए तो यज्ञ करें ना, अभी क्वेश्चन आंसर क्यों कर रहे हैं, शास्त्र सुनने की बात क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक सूत गोस्वामी उनको बता ही रहते कि यज्ञ करो अच्छी बात है, तो सारे ऋषियों ने जितने दूसरे ऋषि थे ना उन्होंने आपस में मीटिंग की और बाल्टी भर के पानी डाल के वो पूरा यज्ञ मतलब समाप्त कर दिया। बोला अब ये यज्ञ नहीं करना है हमको, अब संकीर्तन यज्ञ करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। तो ये होती है शास्त्र के प्रति श्रद्धा, कि जो ये भागवतम है उनके प्रति इनकी इतनी श्रद्धा थी और उनकी पहले से ही पता था उनको कि हमें ये यज्ञ का आयोजन हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस यज्ञ के जरिए से यहाँ पर सूत गोस्वामी आएंगे और उनके जरिए हम कथा सुनेंगे। यज्ञ तो केवल एक माध्यम था उनको बुलाने का। तो यहाँ से हमने आज सेकेंड फिफ्थ श्लोक पढ़ा, आगे से हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।